तहाइफ से भी नवाजा गया, चंद दिन में फराइज सीख लिए, ये है असल बात। जब भी कोई बंदा दीन पे आए तो सबसे पहले आप उसको फराइज बताइए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसानी के साथ तरीके चलते जाएं, एक दो इधर से उधर करें, कभी लोगों को साइड इश्यूज पे ना उलझाएं। कोई पूछे भी तो कहना नहीं इट्स नॉट फॉर यू नाउ, पहले पहला स्टेप फिर दूसरा। बिल्कुल ऐसे कि एक शख्स जमीन पे खड़ा है और 20 सीढ़ियां, तो आप उसको पहले दिन 19वीं सीढ़ी पे खींचेंगे तो वो गिरेगा ना। तो लोगों को हमेशा रुख्सत दें, रियायत दें और इस तरह से उनके साथ मामला करें कि वो अपने दीन को खुद ब खुद एक एक कर कर उसकी सारी सीढ़ियों को उबूर करते जाए। फिर इसके बाद एक वफद था, तजीब का वफद। तजीब कबीला कंदा की एक शाख है। ये लोग अपनी कौम के वो सदकात जो इनके फुकरा से बच रहे थे लेकर आए, यानी फकीरों को दिए जाते हैं वो सदकात, तो उससे कुछ बच गए तो ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे खुशी हुई, आपने इनका एजाज़ो इकराम किया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारे पास इस जैसा अरब का कोई वफद नहीं आया, यानी बड़ा प्रेस्टिजियस, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज किस्म का ग्रोह था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसके साथ खैर का इरादा करता है इसका सीना ईमान के लिए खोल देता है। कितनी खूबसूरत बात है, जब अल्लाह के हाथ में हिदायत तो फिर हम क्या करें अपनी हिदायत के लिए और अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों, बच्चों, शौहरों और बीवियों के लिए। तो इसका जवाब यह कि अल्लाह से दुआ करें। किसी शख्स की भी हिदायत मतलूब है ना, तो आप पहले अल्लाह से दुआ करें। पहले हम फतवे दे देते हैं, ये नहीं मानेंगे, इनको नहीं पता, वो तो बड़े बिगड़ गए। अल्लाह दिल बदल देता है, एक सेकंड का भी माइक्रो हिस्सा पीछे कर दें, अल्लाह कुन कह देना, तो आज दुनिया में जितने भटके हुए लोग हैं ना, सब सीधे रास्ते पे आ जाए। सिर्फ एक कुन होता है, कभी मायूस ना हो। कोई जितना ज्यादा हिदायत से दूर लगे उतनी ज्यादा तड़प के दुआ करें। असल में ये मेरी और आपकी तड़प का इम्तिहान होता है। हम बातें शुरू हो जाते हैं, आपकी दोस्तें हैं, आप कोर्स में आ गई, वो नहीं आ रही, कोई ज़रूरत नहीं है उनको डिस्कस करने की, कोई ज़रूरत नहीं है ये कहने की नहीं वो भटक गई, वो नहीं आएगी, उसको शौक नहीं, इतना बुलाया, इतना बुलाते रहे। दिल में इख़लास रखें, लिखें ज़रा चंद बातें, लोगों को हिदायत पे लाने के क्या ज़राए बनते हैं, दिल में उनके मुखलिस रहें। कोई लेट डाउन करना या तकाबुल या बढ़ोतरी वाला मामला नहीं, खलूस से दुआ मांगे, ज़ुबान पे दुआ रखें और अमल से कोशिश करें। और माल के साथ तोहफे तहाइफ देकर उनका दिल नरम करें। ये चार काम कर लें आप। जुबान पे कभी उनके खिलाफ कोई बात किसी दूसरी दोस्त से भी ना करें, बात पहुंच जाती है वहां भी जहां आप नहीं पहुंचते। अल्लाह से चुपके चुपके दुआएं करें, तोहफे दें, मिलें जुलें, अच्छी अच्छी बातें करें। आप देखेंगे कि अगर हम सब इस वक्त ये नियत कर लेना कि जितनी भी मेरी दोस्त सहेलियां फैमिली की जो औरतें जो अभी दीन से नहीं बाकायदा जुड़ी, मैंने उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलना, पहले अपने ऊपर इस चीज को बांधे, खुद को बांधे, मैंने उनकी बुराई नहीं करनी। आप देखिएगा कि जब आप ये यहां बैठ के कर रहे हैं ना, हो सकता है वो पाकिस्तान में हो सकता है वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, खुद ब खुद अल्लाह ताला रिमोट कंट्रोल के जरिए उनके दिलों में से आपका बुगज और नफरत खत्म कर देगा। ये अल्लाह का फैसला है। जब आप किसी के लिए सीरियस होते हैं ना, सिंसियर होते हैं, तो अल्लाह उसके दिल में आपके लिए प्यार डाल देता है। लेकिन हम जब घुले मिले जज्बे रखते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, तो अगलों को हमसे फिर चिढ़ हो जाती है। तो बहरहाल हिदायत तो वाकई अल्लाह के हाथ में, लेकिन असबाब बंदों के पास है। ये लोग कुरान और सुन्नतों को पूछते और सीखते रहे, फिर वापसी का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अफजल तरीन तोहफे दिए और पूछा कि कोई आदमी बाकी रह गया है। अब बड़े गौर से सुनने की बात है, आगे सबको तोहफे दिए, अच्छे दिए, यहां से भी बात है, बेहतरीन चीज का तोहफा दें, ये नहीं कि सबसे अच्छी अपने लिए रख लें और बेकार दे दें, चलो दे दो। हाँ, ये हो सकता है कि जो दूसरे आपके लिए काम की नहीं, वो दूसरे के लिए आसन भी हो, यानी अफसल का फर्क हो सकता है। आपके लिए एक चीज इतनी अट्रैक्टिव नहीं, दूसरे की चॉइस चेंज हो, वो उसको बहुत अच्छी लगे, लेकिन बिल्कुल ऐसी चीज जो लेट डाउन करने लिए हो, वो नहीं किसी को देनी। और फिर आप देखिए क्या आपने पूछा सबको मिल गई है, कोई रह तो नहीं गया? तो उन्होंने कहा कि एक लड़का हमने डेरे में छोड़ रखा है, वो हम में सबसे कम उम्र है, यानी बच्चा समझ के छोड़ आए होंगे या फिर सामान के पास छोड़ आए होंगे, कोई रीज़न होगी। आपने फरमाया नहीं, उसे भी भेजो। अब आप देखिए अल्लाह के नबी की हिकमत, बच्चे बच्चे को अहमियत देते थे। हम बात अब बच्चों का सारा कॉन्फिडेंस मार देते हैं, बैठो तुम बच्चे हो तुम्हें नहीं पता हम देख लें, नहीं आपने उनको बुलाया। वो आया तो अर्ज बर्दास हुआ, यानी उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैं इसी जमात से हूँ जो भी आपके पास आई थी, आपने इनकी ज़रूरत पूरी कर दी, अब मेरी ज़रूरत भी पूरी कीजिए। सोचे ज़रा क्या ज़रूरत होगी उसकी। आपने पूछा तुम्हारी ज़रूरत क्या है, क्या चाहिए? उसने कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम करे और मेरे दिल को गनी कर दे। अल्लाह हुकर, क्या ये बच्चा, जिसको आप बच्चा समझते हैं ना, वो बड़ों से भी समझदार है। उसने दुनियावी चीज़ों की तलब नहीं रखी बल्कि हिदायत मांगी, जिसके साथ हर चीज़ नेमत बन जाती है। आपने इसके लिए मतलूबा दुआ कर दी और दूसरे साथियों जैसे तोहफे का हुक्म दिया। क्या पता चला, मांगी तो नहीं उसने दुनिया, लेकिन मिल गई, मिलनी थी। इस अमल की बात क्या है कि हमें जो मिलना है ना वो मिल के रहेगा, जल्दी कर लें या ना करें। और दुआ का असर देखिए क्या हुआ, चुनाचे ये सबसे ज़्यादा कनात पसंद इंसान हुआ, यानी अल्लाह ने इसके दिल में ऐसी कनात डाल दी कि लालच ख़त्म हो गया। ज़माने इर्तदाद में, इर्तदाद क्या होता है, रद्द करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से बाद बहुत सारे लोग इस्लाम से फिर गए थे, जो अमूमन होता है जब लीडर्स रास्ते से हटते हैं तो बहुत सारे कच्चे पक्के जो होते हैं वो फिर हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब कोई दमखम नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं वो पहले से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और ये हुआ था मुसलमा कज़ाब के दौर में, इसी तरह ज़कात का इनकार करके कुछ कबीले मुर्तद हुए थे। तो ये सब जब हटे तो ये शख्स ना सिर्फ ये कि इस्लाम पर साबित रहा बल्कि अपनी कौम को भी वाज़ और नसीहत की, चुनाचे वो भी इस्लाम पर साबित रही। अब आप इस पे सोचें ज़रा, अल्लाह के नबी अगर उस बच्चे को ना बुलाते तो एक बंदे की खैर से कितने महरूम रहते। तो मेरे और आपके लिए अमल की बात क्या है कि अपने बच्चों को भी अहमियत दें, अपनी यूथ को भी सामने लाएं। दर्स के लिए आप आते हैं, माओ का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चियों को साथ लाएँ, कंपनी दें, चलो बच्चे चलते हैं, आओ चलते हैं, आज मेरी दोस्त के घर है, आज मस्जिद में, आज उधर है, कहीं पढ़ने जाते हैं, कहीं कोई स्पीकर आता है इधर शहर में, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई बड़ा प्रोग्राम है, साथ लेकर चलें बच्चों को। आज एक बहुत ही ज़्यादा अनदेखी किस्म की दीवार जो हमें अपनी नस्लों के और अपने बीच में दिख रही है ना, वो यही है। इवन अगर मैंने नोट किया, एक ही फंक्शन है, फैमिली इवेंट है दीन के नाम पे, पेरेंट्स भी जा रहे हैं लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमने अपना अलग से प्रोग्राम बनाया, हम आएंगे लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ आएंगे। बहुत ख़तरे की बात है, यानी फैमिलीज़ की ये जो टाइज है ना, ये दिन ब दिन टूट रही हैं। और बच्चे आए हुए हैं किधर हैं पता कोई नहीं है, वो क्या खाएंगे पता कोई नहीं, वो दोस्तों से खाएंगे, जुल्म है। एक हदीस का खुलासा है कि क़यामत के कुर्ब की निशानियों में से एक यह है कि आदमी को बाप से ज़्यादा दोस्त प्यारा हो जाएगा। और आज आप देखें तो स्लोली स्लोली मुसलमान भी इस तरफ चल पड़े हैं। तो लिहाजा अनअटेंडेड मत छोड़िए अपने बच्चों को, ये आपका एसेट है। शुरू से जब आपने आदत डाली होगी कि बेटा तुम बहुत कीमती हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती और मैं मिस करती हूँ तुम्हें, तुम मेरे साथ होती हो या होते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोहब्बत की डोरियों में बांध के लाए इनको। ये नहीं सीधे रहो, किधर जाओगे, क्या किया, शक के सांप ना उनके सीनों में लौटे कि पता नहीं हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो बाकी यह कि कोशिश करते रहे, अल्लाह ताला बाद में उनके दिलों में खुद ब खुद डालेगा। तो यहाँ से एक बच्चे के इस्लाम की वजह से आप देखिए कि पूरी कौम का इस्लाम मजबूत हुआ। दुआ भी कर लें कि अल्लाह हमारी नस्लों में कोई एक ऐसा बेशक उठा दे कि जो पूरे ख़ानदान को हिदायत पे लाने का जरिया बन जाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله हमने आज का जो अपना जितना करना था, हमारा जो टारगेट था, वो कम्प्लीट किया अलहमदुल्ला. सीरत का हमेशा से इसी तरह होता है ना कि वो स्टोरी की तरह चल रहा होता है, आपका दिल नहीं कर रहा होता कि उसको बीच में स्टॉप करें. तो अलहमदुल्ला आज का टॉपिक भी जो है वो एज यूजुअल बहुत ही हार्ट टचिंग है ना, ईमान बूस्टिंग, हार्ट टचिंग, अलहमदुल्ला. तो हम उसका क्विक सा रीकैप करते हैं. उसके बाद में आप लोगों को भी चांस दूंगी कि जो आपने सीखा आज, कितनी सारी हमेशा ही हमारे लिए बहुत अमल की बातें होती है ना, तो आप में से कोई शेयर करना चाहे तो आप भी रेडी रहें, ठीक है ना. चलिए हम उसका क्विक सा रीकैप करते हैं. आप लोग रेडी हैं रीकैप करने के लिए? आज का हमारा टॉपिक क्या था, क्या हमने था, मेन टॉपिक हमारा क्या था? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का जो हज था ना, और किस हिजरी में किया था उन्होंने ये हज, किस हिजरी में किया था, कौन से 9 हिजरी में ना. अल्हम्दुलिल्लाह फतह मक्का के बाद देखें इसमें भी हमें क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत अबू बकर उनको भेजा ना, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को, कितनी बड़ी सआदत है उनके लिए. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें हमें नजर आता है कि उनका पेशेंस, उनका कि खुद नहीं गए उस साल है ना, तो उनको भेजा पहले, उनको अमीर बना के भेजा. तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या सीखा आपने कि हजरत और भी लोग गए थे साथ, लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को अमीर बना के भेजा था. तो इससे क्या हमें पता चलता है कि अमीर बनाना क्यों जरूरी था. ऐसे भी तो भेज सकते थे ना सबको. आप लोग मेरे साथ हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी, मुझे उम्मीद है. लीडरशिप, प्रॉपर डेलीगेशन, बिल्कुल लीडरशिप की अहमियत का पता चलता है ना कि इस्लाम में कितना ज्यादा इस पे दिया गया ना, कि अगर फिर कोई भी काम करे उसमें ठीक है, काम सब करेंगे है ना, लेकिन लीडर होना जरूरी है ना, क्योंकि उससे फिर पूछा जाएगा अगर कोई भी काम में कुछ होता है ना, तो उस एक, अब ये तो नहीं कि आप हर किसी से पूछेंगे जाके, अगर एक लीडर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा हर चीज का, फिर दो काम एवरीवन जो है वो काम करेगा, ये नहीं कि सिर्फ लीडर ही काम करेगा है ना, काम तो सब करेंगे, लेकिन लीडर का होना इससे हमें पता चलता है ना कि कितनी ज्यादा इसकी अहमियत है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं जा सके थे, ठीक है, बिल्कुल इस्लामिक लीडर के इम्पोर्टेंट बताता है, बिल्कुल आप लोग सब ठीक लिख रहे हैं माशाल्लाह. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए, लेकिन आपने क्या किया, आपने कुर्बानी के लिए ऊंट भेजे है ना, इससे भी हमें कितने कितने ऊंट भेजे थे आपने, देखें कितना ज्यादा, मतलब ये नहीं कि कोई थोड़ी सी चीज भेजी थी है ना, 20 ऊंट, सुभान अल्लाह. तो अगर हम सोचें कि इससे लोगों के में आता है जहन में कि इतना माल, तो माल होना कोई बुरी बात है, मालदार होना कोई बुरी बात है नहीं ना. और ये जो ये के, लेकिन बंदा है मोमिन जब उसका माल कहाँ खर्च होता है ना, एक तो कि प्रॉपर उससे आता है, हलाल तरीके से आए और अल्लाह के रास्ते में खर्च होता है ना, वो अपनी जात से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च करता है, सुभान अल्लाह. अगर हम यहाँ से, हमारे लिए भी अमल की बात है ना कि हम देखें कि हमारे जो खर्च है वो किस किस लिए है, दुनिया के लिए है कि अल्लाह के रास्ते में ज्यादा है ना, हमारे लिए अमल की बात है ना इसमें, अच्छा. और फिर आगे बिल्कुल आप लोग सब ठीक है कि अल्लाह के रास्ते में और हलाल और डीलिंग के लिए हमेशा पुराने लोगों को है ना भेजना चाहिए, बिल्कुल ये भी हमारे लिए अमल की बात थी कि उनको जो उनका एक्सपीरियंस होता है ना, ठीक है ना सिचुएशन, लेकिन मेनली यही होना चाहिए कि जहाँ कहीं इस तरह का मामला हो. और फिर यह है कि अगर कोई अहम अनाउंसमेंट करनी है तो उसके लिए भी हमें पता चला कि उसके लिए हमें बड़ी बिग गैदरिंग में उसकी अनाउंसमेंट की जाए ना, अगर कोई बहुत अहम अनाउंसमेंट हो रही है ना कि हज के मौके पे, तो फिर कौन सी सूरत नाजिल हुई थी ना, इसके सूरत यहाँ पे कौन सी नाजिल हुई थी जिसके लिए, जिसके बाद फिर आपने किसको भेजा था, पहले तो सूरत बताया कौन सी आयतें नाजिल हुई थी और क्या हुआ था. सूरत तौबा की, गुड माशाल्लाह, सूरत तौबा की हुई थी और उनमें क्या, उसमें क्या था, क्या किया गया, मुशरिकीन से बरात की आयात बिल्कुल मेजारी का था, और फिर उनको मोहलत दी गई है ना, मोहलत दी गई उनको, तो इस्लाम में ये भी इसकी इस्लाम की खूबसूरती है ना। और फिर ये कि हमें पता चला कि अहद छिकनी जो है वो इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है ना, अहद छिकनी की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हजरत अली को भेजा, हजरत अली को उसका देखें, उनसे हमें सहाबा काम का पता चलता है उनका एक दूसरे के साथ कितना खूबसूरत मामला था ना, कि हजरत अबू बकर देखें उनके सीनियर भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले भेजा भी, लेकिन फिर भी उन्होंने हजरत अली से पूछा है ना कि अमीर हो या मामूर, क्योंकि उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अताअत करते थे, कोई एक दूसरे के लिए ग्रजेस नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनका फोकल पॉइंट क्या था, तो यही एक टीम वर्क का होता है ना, फोकल पॉइंट क्या था उनका, अल्लाह की रजा है ना, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत। तो कितनी खूबसूरत यहाँ से भी हमारे लिए अमल की बात है ना। इखलास बिल्कुल अल्लाह के लिए, कि जो भी काम हम सब भी हम जो भी स्पेशली जब हम अल्लाह के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये चीजें बिल्कुल किसी के लिए एक दूसरे के लिए हमारे लिए नहीं होनी चाहिए हमारे दिलों में, है ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की जो है वो रजामंदी हमारा मकसद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने देखा देखें कि हज का ये है कि हज इस्लाम ने शुरू किया था नहीं ना, उससे पहले भी था, लेकिन उसने कितनी सारी उन्होंने बिदतें और ये बना ली हुई थी, तो मैं तो ये सोची थी सुभान अल्लाह कि ये हमारी ही स्टोरी है ना, कि किसी कौम की तबाही का की अलामत, जैसे उस्ताजा जी बता रही थी ना कि जब वो इबादत के तरीकों में बिदतें बना लेते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह अभी आजकल हम क्या कर रहे हैं ना, यही हाल है ना हमारा भी, कितने हमने अपने इबादतों में कितनी सारी बिदतें बना ली हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब जो है इनसे बचाए, तो इसीलिए कि हमें जो असल दीन की रूह है उससे हम दूर हैं, जो असल सोर्स है हमारा दीन का कुरान और सुन्नत उससे हम दूर हैं, है ना, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये चीजें डाइल्यूट होती जाती हैं, और एक वक्त आता है कि वो चीजें जो गुनाह है वो नॉर्म बन जाते हैं, तो वही अभी हमारा हाल हुआ है ना, बस अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। फिर आगे देखें कि उसके बाद हमने वफूद का पढ़ा है ना, फतह मक्का के बाद सुभान अल्लाह किस तरह लोग फौज दर फौज जो है वो दीन में दाखिल हो रहे हैं, अभी अभी देखें कि क्या हो, बिल्कुल अल्लाह हमें बचाए इन सारी चीजों से। तो अल्लाह उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे देखें कैसे इस्लाम, उससे क्या पता चलता है आपको कैसे फतह मक्का के बाद जो है लोग दाखिल होना चाहिए, कि हक हमेशा जो जीत है वो किसकी होगी, हक की है ना, और बातिल हमेशा मिटने के लिए ही है ना। अच्छा, कौन से इसको जो है साल को कहते हैं वफूद का साल कहा जाता है, वो कौन सा साल है? नौ हिजरी का ना। अच्छा, तो सुभान अल्लाह इससे भी हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी थी है ना, उसमें इतनी कशिश थी, सुभान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था, जैसे हम पीछे भी जहां भी हम सीरत पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें और ये बात क्लियर होती जा रही है ना कि इस्लाम कैसे फैला है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से, तलवार से नहीं है ना, और उनका फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी वो इखलाक दे जहां जहां दुनिया के जिस हिस्से में हम रह रहे हैं, कि हम अपने इखलाक की वजह से इस्लाम को फैलाने वाले बने ना, तो फिर हमें तो तलवार की तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो अपने लिए बहुत दुआ मांगा करें साथ साथ कि अल्लाह ताला हमें भी वो दे। अच्छा, फिर हमने देखा कि जो ये वफूद आ रहे थे उनके डिफरेंट मकासद थे ना, लेकिन जो एंड है फिर सबका यही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका मकसद तो सबका तो ये नहीं था कि इस्लाम सीखने के लिए आ रहा है ना, कोई किसी मकसद के लिए आ रहा है, कैदियों को छुड़ाने के लिए आ रहा है ना, तो कोई अमान के लिए आ रहा है, कोई किसी के लिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था उनके साथ उनका इस्तकबालहाना, किस तरह उनका इस्तकबाल किया अपने अखलाक के साथ, फंदा पेशानी के साथ, गिफ्ट देके उनको, है ना, तो तलीफे कल्ब के लिए हमें, तो जब भी हमने अपने लिए क्या इसमें अमल की बात ली, कि कोई आपके पास गेस्ट आ रहा है तो बाकी सारी चीजों को, मतलब जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उनको उस वक्त छोड़ के गेस्ट को वेलकम करना, उनको टाइम देना है ना, उनको एंटरटेन करना है, हम अपने इखलाक की वजह से लोगों को हम जितनी ज्यादा अहमियत देंगे, लोगों में इंटरेस्ट लेंगे, फिर ही वो हमारी बात सुनेंगे ना। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये देखा कि जो कबीला अब्दुल कैस का था जो वक्त, उसमें आपने क्या देखा अपने लिए अमल की बात हो कि वो जो थे एक एक जवान थे, बाकी सब तो आ रहे हैं कि जल्दी से, है ना, जो गेस्ट थे इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। उनमें से एक जो जवान थे उन्होंने बड़े तहमल के साथ पहले अपना चेंज किया, क्योंकि जब बुढ़ बारी है ना, क्या अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो खसलतें हैं जो उनको, जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं ना, दूर अंदेशी और बुर्दबारी, है ना, डिसेंसी, तहम्मुल। तो अल्लाह ताला हमें भी वो ये दे, है ना, और फिर उनके इसकी वजह से जो है वो इसकी वजह से देखें कितना। और फिर आपने जो बताया चार बातों का जो हुक्म दिया, जो इसकी तरतीब है जो हमारे लिए, वो क्या थी? जो आप सल उन्होंने पूछा ना अमल की बातें, तो चार जो अमल की बातें अगर दे लेंगे आप तबलीग के लिए, आप कह लें कि क्या तरतीब है उनकी, तौहीद, गुड, स्टेप बाय स्टेप ना, तौहीद, नमाज कायम करना, जकात देना, ठीक है, सब ठीक लिख रहे हैं माशाल्लाह से, और रमजान के रोजे रखना। तो कितना सिंपल कि अगर कोई हमसे पूछे तो एक हमें फॉर्मूला मिल गया ना कि बस ये चीजें हम पहले बताएं, कि पहले ये नहीं कि देखें एंड पे उनको फिर कहाँ पे वो बता रहे हैं कि नशावर चीजों से मना करने का, तो हमारा क्या होता है इसके बरक्स, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम पहले मना करना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि तौहीद जब दिल में आएगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, तो ये चीजें खुद ही से छूट जाएंगी, फिर हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे आप मिसाल यही ले लें, किसी को हम नेल पॉलिश लगी हुई देख लेते हैं नमाज पढ़ते हुए, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यही ना, पहले मना करना, तो पहले उनको कहाँ से हमने सिखाना है, कहाँ से शुरू करना है, तौहीद से बात शुरू करनी है ना, तो फिर ये चीजें खुद ही नमाज से अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम हो गया खुद ही, तो बहुत ही खूबसूरत तरतीब है। अच्छा, फिर आगे आगे जो था वो तो बहुत ही खूबसूरत, जो 7 बिन बकर का हमने पढ़ा है ना, उनके उनके वफद का पढ़ा, उसमें था दमाम बिन सालबा। तो अल्लाह ताला से दुआ हमारी ये कि हम सबको बना दे अपनी अपनी जगह को, अल्लाह ताला हमें अपनी अपनी जगह पे दमाम बिन सालबा की तरह हमें बना दे, कि हमारी वजह से हमारे खानदान में हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं जो इस्लाम की तरफ आ जाए ना। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इनकी हार्ट टचिंग थी ना ये वाली सारा उनका, और इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें नजर आता है कि कितने सब्र के साथ उन्होंने उनकी बात सुनी, कि वो कहाँ एक लीडर, आजकल हमारे अंदर ये चीजें खत्म होती जा रही है ना, सारा जो भी हमने देखा इसमें सारा, फिर आगे जो हम देख रहे हैं आसरा और बला का जो वक्त था, उसमें भी हमने क्या सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही वेलकमिंग स्टाइल उनका है ना, कि हमें लोगों के लिए वरना, उसमें भी क्या क्या अमल की बात ली अपने लिए, कि जब भी कोई मिले तो उसे खंदा पेशानी से मिले, स्पेशली हम दीन का काम करने वाले लोग है ना, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, और खुशखबरियां देने वाले लोगों को स्माइल के साथ हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा हमें पेशेंस की जरूरत होती है, और ये सारा कहाँ से आता है, हमें कुरान पढ़ने से ना, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो है। और फिर अगर किसी को हमने देना है लोगों की हिदायत पे लाने के लिए, तो उसमें देखें कि उसमें क्या चीजें हमारे लिए अमल की, अगर हम किसी के लिए चाहते हैं अपने दिल में कि उसको उसके लिए ख्वाहिशमंद है किसी की हिदायत के लिए, बिल्कुल आप ठीक लिख रहे हैं माशाल्लाह मरहबा, तो हमें क्या चार चीजें आज मिली हमें कि हमने वो रखनी है अपने, है ना, बिल्कुल दुआ, ठीक है, पहले तो ये कि दिल में खलूस है ना, खलूस के साथ हमारा, खलूस के साथ हम किसी के लिए वाकई हमारे सिंसेयरली हम किसी को बुला रहे हैं ना, कोई उसमें कोई रिया नहीं, कुछ नहीं, फिर हम अपनी दुआ करनी शुरू करते हैं उनके लिए, है ना, फिर अमल से कोशिश करें और फिर बेहतरीन चीज का तोहफा दें, है ना, तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे, इसको अपने लिए अपना मोटो बनाएंगे, इसको बहुत ही खूबसूरत सा इसकी चार चीजें हमें मिल गई है ना, बच्चों को फिर देखें हमें पता चला कि बच्चों को इम्पोर्टेंस दें, कि वो एक बच्चे की वजह से फिर कितना उसकी वजह से पहला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी भेजा है ना, फिर उसकी वजह से आगे वो देखे इस्लाम पे साबित कदम रहे, अपनी कौम को भी उन्होंने जाके दिया और उनको उनकी वजह से इस्लाम लेके आए, तो तो सारी जो सारी बात का हम खुलासा देखें ना, तो यही है कि बस हम अपने, अगर हमने जो काम करना है बस खलूस के साथ है ना, और खलूस के साथ करना और खंदा पेशानी के साथ, अपना इखलाक हमने बहुत अच्छा रखना है, बहुत मैटर करता है ये, है ना। तो अगर आप लोगों के में से कोई शेयर करना चाहता है कि आप लोगों का कोई या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए माइक छोड़ूंगी, आप बताएं कि आज के इसमें से या कोई भी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए माइक छोड़ सकती हूँ, ठीक है। हमारे पास 4-5 मिनट्स हैं, सिस्टर जी, मैं आपके लिए माइक छोड़ती हूँ, आप प्लीज माइक लें।
वगैरह क्या तू दो पॉइंट्स शेयर करना चाह रही थी इस हवाले से कि यहाँ पे हम लोग जैसे अटलांटा के अंदर हैं, यहाँ पे एक इस्लामिक स्कूल के साथ वर्क कर रहे हैं, तो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरह हम डेली लाइफ में देखने को मिलता है कि जब चीज़ें इस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर वाकई लोग चौक दर चौक आते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक इवेंट था और उसके ऊपर इस बात का मतलब इस बात की खुशी भी थी और अफसोस भी था कि हमारी कम्युनिटी कुछ थोड़ा लेट रिएक्ट करती है किसी इवेंट पे आने के लिए। तो जिस दिन वो इवेंट था उस दिन कुछ लोग आना चाह रहे थे, टिकट्स मांगना चाह रहे थे, लेकिन वो इवेंट कम्प्लीटली सोल्ड आउट था, दीन का इवेंट था, कम्प्लीटली सोल्ड आउट था। तो खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह ताला दीन को उस लेवल पे लेके जाए कि जहाँ पे फिर वफूद जौक दर जौक आए, कोई किसी सिलसिले में, कोई किसी सिलसिले में। जैसे कि इस्लामिक स्कूल के अंदर नॉन मुस्लिम डेलीगेशन भी आते हैं किसी भी ना किसी हवाले से, लेगो कॉम्पिटिशन के हवाले से या किसी भी वाले से। तो बहुत जरूरत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जो 9 हिजरी के हवाले से इसकी मजीद डिटेल को देखें और फिर उन लोगों को उसी तरह से इंटरेक्ट किया जाए, और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको बिगनर लेवल इंफॉर्मेशन नॉलेज दी जाए, और जो आगे हैं उनके लिए मजीद इसलाह और तरबियत का एहतमाम हो। दूसरी बात जो मैं एक शेयर करना चाह रही थी वो ये थी कि बच्चों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली जब मेरी मुलाकात होती है दीन के हवाले से दीन के लोगों के अंदर, तो उनके जब बच्चों के साथ बैठा जाता है तो मतलब मैं उनसे बच्चों से पूछती हूँ कि क्या आपको ये कुछ आता है, जबकि मतलब माएँ बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं, लेकिन जब बच्चों से बात होती है तो उन बच्चों को वो तवज्जो नहीं होती, उनको सिर्फ इसके भी मायने नहीं आते। तो फिर बहुत दिल दुखता है और इस बात का एहसास होता है कि बहुत जरूरी है कि, और अपने लिए बहुत दुआ निकलती है कि अल्लाह हमें वो चिराग ना बनाना जिसके चिराग तले अंधेरा हो, मतलब हमें वो रोशनी बनाना जो अपने घरों को भी रोशन करे और दूर तक उसकी रोशनी जाए। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी औलाद के साथ वक्त स्पेंड करें, उनको एजुकेशन करें, क्योंकि वो मतलब हमारी बेसिक जो हमारी जिम्मेदारी है एज अ मदर वो हमारी अपनी औलाद से शुरू होती है, और कल को वो हमारे मददगार बन जाएं, वजाली वजीरम मिन अहली ताकि उश्तुद भी अजरी व अशरिकु फीक अमरी, ताकि हम मिल के फिर इस दीन का काम दूर दूर तक कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जजाक अल्लाह खैर व अहसन जजा। बहुत ही खूबसूरत रिमाइंडर था आपका हम सबके लिए। अभी जो ना यही बात जो आपने की, कल किसी की मेरे साथ बात हो रही थी तो वो भी यही, उन सिस्टर की आंखों में आंसू थे, वो यही कह रही थी कि मैं अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी फैमिली के साथ जन्नत में जाऊँ, कि कितना दुख होगा हमें अगर हम वहां जाए तो हमारे बच्चे हमारे साथ ना हो, है ना। तो हमारी यही बस हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे सारे घर वाले, हमारा पहले तो अपने घर से स्टार्ट करके है ना, फिर इर्द गिर्द अपने पूरी हमारे जितने मिलने वाले फ्रेंड, हम सब अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठे जन्नत में लेके जाए, है ना। तो हम उनको अपने अपनी औलादों को, अपने हस्बैंड को, अपने सबको हम साथ लेके चले। तो ये अल्लाह ताला से बस यही हमारी दुआ है ना, कि हम सबको इस काबिल बनाए कि हम जो पढ़ते हैं खुद सीख रहे हैं, ये अल्लाह का एहसान है ना, कितना बड़ा। आज भी हमने पढ़ा कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम ये काम करें, है ना, कि ये अल्लाह ताला का ही एहसान है हम पे, वरना हम भी उसी तरह जिस तरह मेजोरिटी जो है वो अभी अगर हम क्लास में ना हो तो हम क्या कर रहे हो, हम दुनिया के कामों में लगे हो ना। तो ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की तौफीक है कि हम यहाँ बैठ के अल्लाह के दीन को समझने के लिए, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए। फिर अल्लाह ताला से हम बस यही दुआ करेंगे कि हमें तौफीक दे कि जो हम सीखते हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला का ये तो वादा है ना, कि इस्लाम ने आना है, इस्लाम ने एक गालिब आना है, हक ने गालिब आना है। तो अल्लाह ताला हमसे भी ये काम करवा ले, हमें जाया ना करे अल्लाह ताला, आमीन। तो इंशाल्लाह आपकी क्लास का टाइम हो गया, हम क्लास को रैप अप करते हैं। दुआओं में याद रखें। जरूर आप लोग भी ना आज आपने सीख इतनी सारी जो चीजें पढ़ी, जरूर किसी के साथ इसको शेयर करें और अपने अमल की बातें जरूर लिखें उसमें, है ना। अगर आप में से कोई इस तरह करता है कुछ पॉइंट लिख के, तो आप भेज भी सकते हैं, अपने इसको ब्लॉग में डाल सकते हैं। हो सकता है जिस तरह से आपने उसको परसीव किया किसी और ने ना किया हो, तो वो आपकी कही ये बात दूसरे के लिए सदका जारिया बन जाए, है ना। तो कोशिश करें कि ये जो असीरत का भी जो एंड है ना, ये बहुत ही हार्ट टचिंग है। जिस तरह हम पढ़ते हैं, जिस तरह हम उसको लेते हैं ना, बाद में वो फिर चीजें हम उस तरह से नहीं उसको याद रख सकते, उसको भूल जाते हैं। तो कोशिश क्या करें, अगर आज आपने कुछ इस तरह लिया तो उसको जरूर लिख लें, है ना, और उसको आगे भेजें, आगे फैलाएं उसको। तो अल्लाह सुब्हान तआला आपको बेहतरीन जजा दे सबको, आपके पेशेंस का, जिस तरह से माशाल्लाह से आप क्लास लेते हैं, और आपको सबको, हम सबको, है ना, मुझे भी आपको भी, हम सबको अल्लाह ताला इस्तकामत दे, इसी तरह से हम दीन को सीखते रहे। तो हम दुआ कर लेते हैं, ठीक है, अपने उस्तादों के लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह ताला हमारे उस्तादों पे के लिए हमें सदका जारिया बनाए ना, जिस तरह से मेहनत से वो हमारे साथ, हमारे लिए, हमें अंधेरों से निकाल के उन्होंने हमें रोशनी में खड़ा किया, है ना, हमें चलना सिखाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन पे बहुत रहम करे, उनके वक्त में, उनकी सेहत में, हर चीज में उनकी बरकत दे, ईमान में। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब्बना हबलना मिन अजवाजीना व जुर्रियातीना कुर्रता आयुनिन व जालना लिल्मुत्तकीन इमामा। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا